वसुंधरा मनोज जी को देखकर बोली थी, मनोज जी, आपको अब शांत हो जाना चाहिए। आपको इस बात से संतोष करना चाहिए कि कम से कम आपकी बेटी तो आपको मिल गई, वो तो सही सलामत है। तब मनोज जी केवल नम आंखों से अपने हाथ जोड़कर रह गए थे। तब तक आस्था वहां आ गई थी और कहीं ना कहीं वो मनोज जी को ढांगस बंधाते हुए वसुंधरा को देख चुकी थी। वो उनके पास आकर बोली थी, वसुंधरा आंटी बिल्कुल ठीक कह रही हैं मामा जी, अरमान जी की तरफ से हम आपसे माफी चाहते हैं, उन्होंने जो भी आपसे कहा है। ये सुनते ही मनोज जी तुरंत आस्था की ओर देखकर बोले थे, ये कैसी बातें कर रही हो बेटा, तुम क्यों माफी मांगोगी? और वैसे भी अरमान जी ने जो कुछ कहा बस थोड़ा गुस्से में कहा है, आखिरकार हम भी तो कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे थे ना, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। असल में मनोज जी मिस्टर अरमान से माफी की उम्मीद कैसे कर सकते थे, उनके दिल में सिंघानिया नाम का डर कहीं ना कहीं बहुत गहराई तक बैठा हुआ था, ऐसा डर जो हर बार इस नाम के सामने आते ही अपने आप महसूस होने लगता था। तब तक अविनाश आगे आए और आस्था को देखकर बोले, लेकिन आस्था तुम्हें मामा जी से इस तरह माफी मांगने की क्या जरूरत है, और वैसे भी गलती अरमान की है, माफी भी उसे ही मांगनी चाहिए। आखिर उसे क्या जरूरत थी मामा जी से इस तरह बात करने की, क्या उसे ये नहीं पता कि वो उसकी कंपनी के किसी मेंबर से नहीं बल्कि तुम्हारे मामा से बात कर रहा था। अभी अविनाश की बात खत्म ही हुई थी कि आस्था ने हल्की मुस्कान के साथ उनकी ओर देखकर कहा था, भैया आप बेकार में परेशान हो रहे हैं, हमने अभी अरमान जी से बात की है और वो मामा जी से माफी मांगने के लिए भी तैयार हैं। जैसे ही आस्था ने ये कहा, अविनाश हैरानी से भर गया था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अरमान खुद माफी मांगने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन जब आस्था खुद कह रही थी कि अरमान ने ये बात कही है तो वो इस पर ज्यादा सवाल भी नहीं उठा सकता था। फिलहाल तभी कबीर ने आगे बढ़कर अविनाश के कंधे को हल्के से दबाया था, मानो इशारे में कह रहा हो कि अब उसे शांत हो जाना चाहिए। वहीं आकाश और सुमित भी आस्था की ये बात सुनकर कि अरमान खुद माफी मांगेगा, दोनों एक पल के लिए हैरान रह गए थे। फिर दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ कहे सीधे स्टडी रूम की ओर जाने लगे थे, ताकि जाकर देख सकें कि इस वक्त अरमान का मूड आखिर कैसा है। तभी अचानक वीर वहां आ गया था। वो सीधे आस्था के सामने आकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया था और इसकी ओर देखकर बोला था, आस्था जी, आज तक मुझे आपसे ठीक तरीके से माफी मांगने का मौका नहीं मिला, लेकिन आपने मुझे अपने ही लोगों की तरह अपनाया है, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। वीर की बात सुनकर आस्था के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई थी। उसने स्नेह से उसके सिर पर हाथ रखा था, बिल्कुल वैसे जैसे घर की बड़ी भाभी छोटे को आशीर्वाद देती है। फिलहाल अब आस्था को वहां देखकर तभी वसुंधरा आगे बढ़ी और उसने आस्था को गले से लगा लिया था। उसने आस्था को ढेर सारा आशीर्वाद दिया और कहा कि वो अरमान का ध्यान रखे। उसके बाद वसुंधरा ने भारी दिल से सबसे विदा लेने लगी और अंत में वो सीधा अंश के पास पहुंची थी। अंश इस वक्त वहां दादी की गोद में था। वसुंधरा ने आगे बढ़कर तुरंत अंश को अपनी गोद में उठा लिया और उसे ढेर सारा प्यार करने लगी। इस वक्त वसुंधरा की आंखें पूरी तरह से नम थी। अंश को छोड़कर जाने का उसे गहरा एहसास हो रहा था। वो अंश से बेहद प्यार करने लगी थी। अंश के बिना जीने के बारे में तो वो सोच भी नहीं सकती थी। कहीं ना कहीं उस वक्त वहां मौजूद हर इंसान वसुंधरा का अंश के लिए सच्चा प्यार महसूस कर रहा था, लेकिन फिलहाल सभी ये बात भी अच्छी तरह से जानते थे कि अपने स्वार्थ के लिए वे वसुंधरा को यहाँ रोक नहीं सकते, और वैसे भी वसुंधरा को अपनी जिंदगी और अपनी जिम्मेदारियां भी निभानी थी। इसी सोच के साथ किसी ने भी वसुंधरा को रोकने की कोशिश नहीं की। तभी आस्था आगे आई और अंश को वसुंधरा की गोद में सहलाते हुए बोली, आंटी जी, जब भी आपका मन करे आप यहाँ आ सकती हैं, ये घर आपका ही है। जैसे ही आस्था ने वसुंधरा को इतनी इज्जत और अपनापन दिया, वसुंधरा की आंखें भर आईं। वो तुरंत आस्था को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी थी। उसकी आंखें पूरी तरह से भरी हुई थी, मानो वो कहना चाह रही हो कि आस्था ने उसके सारे गुनाहों के बावजूद उसे माफ कर दिया है। कहीं ना कहीं इस वक्त वसुंधरा का दिल कृतज्ञता और भावनाओं से भर चुका था, लेकिन वो ये भी जानती थी कि जब तक अभिमान की तरफ से उसका दिल पूरी तरह से साफ नहीं होता, तब तक वो इस घर में नहीं रह सकती। ये फैसला वसुंधरा ने खुद ही लिया था। फिलहाल सबसे विदा लेने के बाद उसका मन हुआ कि वो जाकर अरमान से भी मिले, लेकिन वहां का माहौल कुछ अजीब था, इसलिए ना चाहते हुए भी वो अरमान से मिले बिना ही वहां से निकल गई और रायचंद हाउस की ओर रवाना हो गई। वसुंधरा के जाने के बाद कहीं ना कहीं आस्था भी थोड़ी इमोशनल हो गई थी, क्योंकि इतने दिनों में वसुंधरा के साथ रहने की सबको आदत हो गई थी। इसी बीच मनोज जी ने आस्था को देखते हुए कहा, आस्था बिटिया, मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ। ये सुनकर आस्था नम आंखों के साथ बोली, आप परेशान मत होइए मामा जी, प्रियंका दीदी बिल्कुल ठीक हैं, मामी जी उनके साथ हैं, वो उन्हें लेकर अभी आती ही होंगी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। जैसे ही आस्था ने मनोज जी को समझाया, मनोज जी भावुक होकर उठे और आस्था के सिर पर हाथ रखने लगे।
वहीं दूसरी ओर कमरे में प्रियंका सिसक सिसक कर अपनी माँ के गले लगकर रो रही थी। आखिरकार वो मौत के मुंह से वापस आई थी। राजवीर ने किस तरह उसे नोचा था, किस तरह उसके साथ दरिंदगी की थी, ये सारी बातें वो अपनी माँ को एक एक करके बता रही थी। वैसे भी प्रियंका शुरू से ही अपनी माँ से अपनी हर अच्छी और बुरी बात साझा करती आई थी। आज भी उसने वही किया। राजवीर का पागलपन और उसके शरीर पर बड़े जख्म, सब कुछ वो अपनी माँ को बता रही थी। ये सुनकर सीमा जी बोली, बेटा मैं जानती हूँ कि कहीं ना कहीं ये सारी गलती हमारी ही है। कहते हैं कि बड़ों के कर्मों की सजा बच्चों को मिलती है। काश मैंने कभी किसी के साथ गलत व्यवहार ना किया होता तो शायद आज मेरे बच्चों के साथ ऐसा ना होता। ये कहते हुए सीमा जी काफी उदास हो गई थी। तभी रौनक वहां आ गई। दरअसल आस्था ने बहाने से रौनक को कमरे में भेज दिया था, क्योंकि पहले तो माँ बेटी को दिल हल्का करने के लिए अकेला छोड़ दिया गया था, लेकिन ज्यादा देर तक उन्हें अकेला छोड़ना भी ठीक नहीं था। रौनक अंदर आई। उसे देखकर भी प्रियंका अपनी माँ के सीने से लगी हुई थी। रौनक ने दोनों को बारी बारी से देखा और बोली, मम्मी जी सब आपको नीचे बुला रहे हैं और प्रियंका तुम भी साथ चलो। रौनक की बात सुनकर प्रियंका ने गहरी सांस ली और धीरे से अपनी गर्दन हिला दी। आखिरकार अब उसे सब लोगों का सामना तो करना ही था। सिंघानिया मेंशन में आने के बाद उसने अभी तक एक बार भी आईने में अपना चेहरा नहीं देखा था। वो बार बार आईने में अपना चेहरा देखने से डर रही थी। आखिरकार अब उसका चेहरा पहले जैसा नहीं रहा था। ये बात उसे अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा चुभ रही थी। फिलहाल सीमा जी ने अपनी बेटी को ढांढस बंधाया और उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, बेटा चलो, तुम्हें किसी से घबराने या डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। आखिरकार प्रियंका ने भी हिम्मत करके अपनी माँ के साथ चलने का फैसला कर लिया। रौनक भी आज काफी उदास थी और मन ही मन सोच रही थी कि वाकई इस परिवार पर कितनी बड़ी मुसीबत आ पड़ी है, लेकिन उसे उम्मीद थी कि जल्द ही ये परिवार इस मुश्किल से बाहर निकल आएगा। ये सोचते हुए रौनक भी उनके पीछे पीछे चल दी। कुछ ही देर में वे सब नीचे हॉल की ओर जाने लगे। उधर इस वक्त अरमान अपने स्टडी रूम में बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था।
वहीं अविनाश उस पर पूरी तरह से नजर रखे हुए था और इसीलिए इस काम के लिए उसने एंजल को लगा रखा था। दरअसल एंजल उसके सेक्रेटरी रह चुके थे और अविनाश के लिए बारीकी से काम करना उसे अच्छी तरह से आता था। थोड़ी ही देर में एंजल अरमान के पास कॉफी लेकर गए थे। तब अरमान ने हल्की सी मुस्कुराहट दी और अपने आप को पूरी तरह से शांत दिखाने की भी कोशिश की थी। तब एंजल ने अरमान को देखते हुए कहा था, क्या बात है मिस्टर सिंघानिया, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, अगर कोई बात है तो आप मुझे बता सकते हैं, यू नो। जैसे ही एंजल ने ये कहा, अरमान के दांत आपस में खुद ब खुद भीज गए थे, लेकिन फिलहाल उसने अपने आप को संभालते हुए और अपने शब्दों को थोड़ा पोलाइट बनाते हुए कहा था, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मैं अपनी बीवी को उदास नहीं देख सकता। जैसे ही अरमान ने ये कहा, एंजल हल्के से मुस्कुराकर बोली थी, वाकई बहुत किस्मत वाली है आस्था, जिसको आपके जैसा प्यार करने वाला पति मिला है। ये बोलकर एंजल वहां से चली गई थी। वहीं एंजल के जाते ही अरमान का चेहरा एकदम सख्त हो गया और वो खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोला था, आखिरकार सब लोगों को हो क्या गया है, मुझसे सवाल क्यों कर रहे हैं। अरमान पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट था। तब तक आकाश सुमित वहां आ गए थे। फिलहाल वहीं दूसरी हॉल में अबीर सिंह राठौर लगातार अपने काले चश्मे के पीछे से सब पर नज़र रखे हुए था। हालांकि उसने अपना फ़ोन भी अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, लेकिन उसका ध्यान फ़ोन में कम और आस्था पर ज़्यादा जा रहा था। ये सब उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन चाहकर भी वो किसी से कुछ कह नहीं पा रहा था। उसके दिल के हाल और जज्बात कुछ और ही थे। वहीं अभीर अब अविनाश अबीर को देखकर बोला था, मिस्टर राठौर, अगर अरमान आपकी प्रॉपर्टी नहीं खरीदता तो मैं ही आपके लिए करने वाला था। अब ये सुनकर अबीर तुरंत खड़ा हुआ और अविनाश को गले से लगाकर बोला था, अरे मिस्टर सूर्यवंशी, ये कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे प्रॉपर्टी या किसी भी चीज़ से ज़्यादा मतलब नहीं है, और वैसे भी हम दोनों की ज़िंदगी का एक ही तो मकसद है, सिर्फ और सिर्फ आस्था की खुशी। आप ही आस्था को खुश देखना चाहते हैं और मैं भी, यकीन मानिए मैं आस्था को केवल खुशी देखना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आस्था अरमान सिन्हानिया से बेहद प्यार करती है। इस वक्त अबीर और अविनाश हॉल के दूसरे साइड के कॉर्नर पर थे, जहां दोनों आपस में बातें कर रहे थे। उनकी बातें सुनने वाला वहां कोई तीसरा नहीं था। तभी अबीर ने अविनाश को देखते हुए कहा था, मैं जानता हूं कि मिस्टर सिंघानिया अरमान आस्था को बेहद प्यार करते हैं, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि उसका प्यार कुछ ज्यादा ही है? देखो, प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा प्यार कभी कभी घुटन नहीं बन जाता? जैसे ही अबीर ने ये कहा, अचानक से अविनाश के चेहरे पर कुछ अलग ही तरह के भाव आए थे, लेकिन उसने अपने आप को नॉर्मल रखते हुए कहा था, हमें तो बस इस बात की खुशी है कि हमारी गौरी खुश है, और गौरी की खुशी से ज्यादा इम्पॉर्टेंट मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। अगर गौरी अरमान सिंघानिया के साथ खुश है तो मुझे भी अरमान सिंघानिया पसंद है। ये बोलकर अविनाश ने अबीर के कंधे को दो बार थपथपाया
और वहां से निकलकर एक बार फिर आकर आस्था के पास बैठ गया था। वहीं अबीर के एक्सप्रेशन पूरी तरह से डार्क हो गए थे, लेकिन फिलहाल उसने अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया और अपने आप पर कंट्रोल किया और फिर वापस आकर एक बार फिर से सभी लोगों में ऐसे शामिल हो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिलहाल अब आस्था मनोज जी का हाथ थामे हुई थी और उन्हें धीरे धीरे शांत रहने के लिए कह रही थी। उधर अरमान के सामने आकाश और सुमित खड़े हुए थे और आकाश ने अरमान को देखकर कहा था, क्या बात है अरमान, तुम ठीक तो हो ना? अब ये सुनकर अरमान इरिटेट होते हुए बोला, मुझे क्या हुआ है आकाश, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन अरमान का ध्यान तब कहीं और नहीं बल्कि हॉल में लगे सीसीटीवी कैमरे के जरिए आस्था की आंखों में आए आंसुओं को देख रहा था। आस्था को रोता देख उसके अंदर गुस्सा और बेचैनी दोनों बढ़ते जा रहे थे। आस्था के आंसुओं की तकलीफ वो अपने अंदर पूरी तरह से महसूस कर रहा था। उसने मन ही मन ठान लिया था कि उसकी बीवी अब और नहीं रोएगी, चाहे इसके लिए उसे प्रियंका या उसके परिवार को घर से बाहर ही क्यों ना निकालना पड़े। लेकिन आकाश सुमित ने तुरंत उसे रोक लिया था और अरमान उन्हें सवालिया नजरों से देखने लगा था। लेकिन तभी रौनक सीमा जी और साथ ही प्रियंका को लेकर हॉल में आ गई थी। जैसे ही सीमा जी हॉल में आई वो तुरंत अपने पति के गले से लग गई और रोते हुए बोली थी, आपने हमारी बेटी को क्या हो गया है, देखे ना हमारी बेटी को, ये कहते हुए वो पूरी तरह से रोने लगी थी। और जैसे ही सीमा जी की नज़र अचानक सामने खड़ी प्रियंका पर पड़ी तो अचानक उनके मुंह से एक तेज चीख निकल गई थी। वो पूरी तरह से घबराकर पीछे की ओर हटने लगी थी। अब वो जिस तरह से प्रियंका के चेहरे को देखकर रिएक्ट कर रही थी उसे देखकर सब लोग हैरान रह गए थे। तभी सबके सब तुरंत मनोज जी को संभालने लगे और फटाफट उन्हें पानी पिलाने लगे थे, उन्हें शांत होने के लिए कहने लगे थे। दादाजी ने मनोज जी को देखते हुए कहा था, मनोज इस वक्त तुम्हें खुद को संभालना होगा, तुम्हारी बेटी का चेहरा भले ही बदल गया हो लेकिन ये तुम्हारी ही बेटी है, तुम्हें खुद को इस बात से तसल्ली देनी होगी। लेकिन मनोज जी के होंठ पूरी तरह से कांप रहे थे, ऐसा लग रहा था मानो प्रियंका की हालत देखकर उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा हो। तभी आस्था तुरंत आगे बढ़ी और मनोज जी को शांत करते हुए बोली थी, क्या बात है मामा जी, हमने आपसे पहले ही कहा था कि अगर आप इस तरह का रिएक्शन देंगे तो उससे प्रियंका दीदी को बहुत हर्ट हो सकता है।